सत्संग के वचन हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी द्वारा फरमाए गए सत्संग का हिंदी अनुवाद हैं। सत्संग के वचन
राग मारू महला पहला। काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ ताज हो निचिंदा।
पहली पातशाही श्री गुरु नानक साहब की वाणी है। आप फरमाते हैं कि ऐ पुरुष, अगर तुझे परमेश्वर से मिलना है तो ये पांच चीजें छोड़ दे। सबसे पहले काम छोड़ दे, ये बड़ा खतरनाक है। अपनी स्त्री के सिवाय पराई स्त्रियों की तरफ देखना सबसे निचले दर्जे का काम है। बाकी जितनी भी कामनाएं हैं वे भी काम हैं। काम में रूह गिरती है क्योंकि काम में नीचे जाना पड़ता है। इसके विपरीत हमें नाम की कमाई करके आसमानी मंजिलों पर चढ़ना है। नाम की चढ़ाई ऊपर की तरफ है। काम और नाम में बड़ा फर्क है। कबीर साहब कहते हैं, जहां काम तहां नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम, दोनों कबहू ना मिलें रवि रजनी इकठाम। जिस हृदय में काम है वहां नाम असर नहीं करता, जहां नाम है वहां काम नहीं रहता। जिस तरह जहां दिन है वहां रात नहीं हो सकती, जहां रात है वहां दिन नहीं हो सकता। अब कहते हैं कि दूसरा क्रोध छोड़ दो, क्योंकि क्रोध में रूह फैलती है। जब क्रोध करो आंखें लाल सुर्ख हो जाती हैं, रोम रोम खड़ा हो जाता है, चेहरा और ही हो जाता है, यहां तक कि आदमी अकल से बेबहरा हो जाता है, यानी संतुलन खो बैठता है। तीसरी चीज पराई निंदा है, ये महापाप है, इसे भी छोड़ दो। चाहे गुनाह गुनाह है, मगर और जितने गुनाह हैं उनमें इंद्रियां कुछ ना कुछ लज्जत पाती हैं। इसके विपरीत निंदा में क्या लज्जत है? कोई नहीं। ये न मीठी है न फीकी है न कोई और स्वाद रखती है। मगर आजकल मजहबों के पास बड़ा तोपखाना क्या है? पराई निंदा। एक मजहब दूसरे मजहब की निंदा करता है, ना कुछ लेना ना कुछ देना, पापों का भार सर पर उठा लेना। मगर जो संतों का सत्संग है वहां कभी निंदा नहीं होती। जहां निंदा होती है वो सत्संग नहीं। संतों का सभी मजहबों के साथ प्यार है। जिस तरह धोबी के घर तीली का कपड़ा भी जाता है, हलवाई का कपड़ा भी जाता है, कसाई का भी जाता है, वो लेने से इनकार नहीं करता। वो कारीगर है, वो जानता है कि उनमें सफेदी है। वो कहता है कि मैं ज्यादा भट्टियों पर चढ़ाकर सफेदी निकाल लूंगा। अच्छे इंसान तो क्या, संतों का चोरों ठगों से भी प्यार है, क्योंकि वे देखते हैं कि इनके अंदर भी रूह है। बड़े बड़े चोर ठग भी संतों की शरण में आकर महात्मा बन गए, जैसे विधि चंद, भूमिया वगैरह। बाकी रहा लोभ और लालच, ये भी छोड़ दो। जब छोड़ोगे तो रूह अंदर जाने के काबिल होगी। ये तो हुए बाहर के साधन जो ठीक हो गए। इसके अलावा और परहेज भी हैं, वे आगे कहते हैं।
प्रम का संगल तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया।
हमारे इस वजूद के चार हिस्से हैं, पिंड, अंड, ब्रह्मांड और सचखंड। जो सचखंड है वो लाफानी देश है, वो न प्रलय में गिरता है और न महाप्रलय में। जो अभ्यास करके एक बार वहां पहुंच जाए वो न कभी जन्म लेता है न मरता है, न आता है न जाता है। जो पिंड है इसमें छह चक्र हैं। जो नाम मुक्तिदाता है वो इनमें नहीं, इनमें देवी देवता हैं। योग शास्त्र, अष्टांग योग और अन्य ग्रंथ पढ़कर देखो, वे कहते हैं कि मूल चक्र में गणेश है, इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा है, नाभि चक्र में विष्णु है, हृदय चक्र में शिव है, कंठ में शक्ति है, और आप आंखों के पीछे बैठे हुए हो। ये सब देवी देवता आपसे नीचे के चक्रों में बैठे हुए हैं। अगर योगियों ने इन 6 चक्रों को तय किया है तो सिर्फ वर्णात्मक नाम जप कर। मगर जो नाम मुक्ति देता है वो लिखने पढ़ने में ना आने वाला कानून और ना बोली जा सकने वाली भाषा है, जो सारी दुनिया की एक ही है। आदमी जर्मनी का हो या रूस का हो, इंग्लैंड का हो या किसी और मुल्क का, वहां किसी मुल्क का सवाल नहीं। इसी तरह वहां कोई भाषा नहीं। वेद शास्त्र और दूसरा जितना लिटरेचर है सारा भाषा में है, लफ्जों में है। इसलिए कहते हैं कि इनमें नाम नहीं, नाम की महिमा है। नाम तुम्हारे अंदर है। ये वेद शास्त्र और अन्य ग्रंथ कह रहे हैं कि नाम तुम्हारे अंदर है। मगर जब तक हम 9 दरवाजे खाली करके ऊपर ना जाएं, वो नहीं मिलता। कहते हैं दोनों आंखों से नीचे नीचे सारा भ्रम चक्र है। जो देवी देवता हैं वे अपना काम कर रहे हैं। हिंदू कहते हैं कि विष्णु पालता है। जो खुराक हम खाते हैं वो मेदे में जाती है, मेदे में रगें लगी हुई हैं, कोई कानों को जाती है, कोई आंखों को, कोई दिमाग को, कोई मुंह को। इसी तरह कोई कहां कोई कहां। जब वो खुराक हजम होकर खून बनता है तो वो रगों के जरिए जिस्म के हर हिस्से को पहुंचता है। मानो विष्णु अपना काम करता है। लेकिन वो हिंदुओं को ही नहीं पालता, बल्कि मुसलमानों को भी पालता है, ईसाइयों को भी पालता है और दूसरे मजहब वालों को भी पालता है। अब कहते हैं कि जब आप इस भ्रम के चक्र से ऊपर आओगे तो अंदर रोशनी हो जाएगी और नाम मिल जाएगा। स्थूल शरीर से संबंध टूट जाएगा और आप सूक्ष्म देश में आ जाओगे। जब आप एकाग्र होकर आंखों से ऊपर आ गए तब आपको यूं मालूम होगा कि आपका शरीर के साथ कोई संबंध नहीं, बल्कि यह शरीर अलग हो जाएगा। सबसे पहले तारामंडल आएगा, फिर सूरज और चंद्रमा आएंगे। वेद इसे ही देवों और पितरों का मार्ग कहते हैं। जब इन्हें छोड़कर और ऊपर आ जाओगे तो आगे सतगुरु खड़ा है। फिर सतगुरु से नाम के बाकी दर्जों का पता लगेगा।
निसदामन जो चमक चंदायन देखे एहनिस जोत निरंतर पेखे।
जब आप एकाग्र होकर आंखों के पीछे होकर ऊपर आओगे तो जिस तरह अंधेरी रात में बिजली की रोशनी होती है, अंदर रोशनी हो जाएगी। जैसे कि पहले अर्ज किया गया है, इसके आगे तारामंडल आएगा। यही तुलसी साहब कहते हैं, गगन द्वार दीसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। उधर हजरत इब्राहिम भी कह रहे हैं कि मैंने अपने अंदर तारा देखा है। तारामंडल के आगे सूरज और चंद्रमा आते हैं, जिन्हें लांग कर रूह को आगे जाना पड़ता है। यही हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं कि मैंने चंद्रमा के 2 टुकड़े किए। इस तारामंडल का जिक्र करते हुए गुरु नानक साहब कहते हैं, तारा चढ़या लम्मा क्यों नदर निहालिया राम, सेवक पूर करम्मा सतगुर शब्द दिखा लिया राम। यानी जब तारा मंडल और सूरज चंद्रमा लांघोगे तो नाम का पता लगेगा। इसी तरह जब देवों और पितरों का मार्ग लांघोगे तो आगे सहस दल कमल में 1000 बत्ती की ज्योत मिलेगी। सहस दल कमल सूक्ष्म देश का हेडक्वार्टर है और इस दुनिया से कई गुना लतीफ सूक्ष्म है। वेद इसी मुकाम के मालिक के बारे में कहते हैं कि उसके सहस्त्र नाम हैं। मौजूदा हालत में अगर आपको कहीं जाना हो तो आपको रेल की या जहाज की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर पर्दा खुल चुका है तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं। फिर अगर अमेरिका जाना है तो जरा तवज्जो दो, झट अमेरिका पहुंच जाओगे। अगर अफ्रीका जाना है तो अफ्रीका पहुंच जाओगे। मतलब कि जहां भी जाना हो वहां फौरन पहुंच सकते हो। जब वहां सहस दल कंवल में जाओगे तो अपनी पहचान आएगी। जब तक अपनी पहचान नहीं आती तब तक परमेश्वर कहाँ। कोई कहता है कि वो परमेश्वर इस तरह मिलता है, कोई कहता है कि इस तरह मिलता है, کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ، زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، پتہ کسی کو بھی نہیں، کیونکہ کوئی گرو نہیں ملا۔ جس طرح اگر کچھ اندھے مل کر دھول اڑائیں تو انہیں کیا پتہ لگتا ہے کہ وہ کہاں پڑتی ہے، ان کے اپنے اوپر یا کسی اور کے اوپر۔ سو جب تک اندر گرو کو پرتیکش نہیں کرو تب تک سمجھ نہیں آتی۔ یہ جو ہمارے ٹھاکر دواروں یا دھرم شالاؤں میں آرتی ہوتی ہے یہ کیا ہے؟ جب رشی منی ابھیاس کر کے اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں آرتی ہو رہی ہے، ہزار بتی کی جوت جل رہی ہے، ترلوکی کا مالک نرنجن بیٹھا ہوا ہے۔ جب انہوں نے ہمیں اندر لے جانے کے لیے ذکر کیا تو ہمیں اندر تو کیا جانا تھا، باہر دیے کی جوت جلا لی اور کانسے اور پیتل کے گھنٹے اور شنکھ بنا لیے۔ اب کہتے ہیں کہ جو سچی دھرم شالا اور سچا ٹھاکر دوارا ہے وہ آدمی کے اندر ہے۔
آنند روپ انوپ سروپا گرپورے دیکھایا۔
یہ عجیب اور سمجھنے والی بات ہے کہ گرو کیا ہے۔ لوگ شریر کو گرو کہتے ہیں مگر شریر گرو نہیں، شریر فنا ہے۔ یہ نہ گرو کا رہنے والا ہے نہ ششیہ کا، دونوں کو ہی پھینک دینا ہے۔ جب تارا منڈل اور سورج چندرما لانگ کر جاؤ گے تو گرو ملے گا۔ جب آپ اسے ایک بار اندر پرتکش کر لو گے تو وہ ساری عمر آپ کے ساتھ رہے گا۔ جب اندر گرو آ جائے گا تو وہ کہے گا پکڑو نام کو اور اوپر چلو۔ چاہے کسی قوم کے ہو کر جاؤ، کسی مذہب کے ہو کر جاؤ، جو روحانی راہ ہے وہ سب کے لیے ایک ہی ہے۔ جب تک ہم وجود میں بیٹھے ہیں ہمارے الگ الگ خیال، الگ الگ مذہب، الگ الگ سوسائٹیاں ہیں۔ اندر بڑا عجیب انتظام ہے اور آپ کی دولت ہے۔ جو اندر گرو کا سوروپ ہے وہ اتی سندر اور اتی پیارا ہے۔ آدمی گرو کو ملے بغیر آنکھوں تک جا سکتا ہے مگر آگے نہیں جا سکتا۔ جب تک پورا گرو نہ ملے اس کا نوری سوروپ بھی اندر نہیں آئے گا۔ جو خود اندر نہیں گیا وہ دوسرے کو کیسے لے جا سکتا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ پورا گرو ہو، کامل مرشد ہو۔ میں کہتا ہوں کہ چاہے اس کی تلاش میں ایک جنم بھی لگ جائے پرواہ نہیں، جب پورا گرو مل جائے پھر تحقیقات کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے ستسنگ میں بہتیرے استری اور پروش ایسے ہیں جن کے گرو ہر وقت ساتھ رہتا ہے۔
سات گر ملو آپ پرب تارے سسکار سور دیپک گنارے۔
جب آپ اندر ستگرو کے چرنوں تک پہنچ جاؤ اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو تو وہ کہتا ہے کہ مالک کے دربار میں چلو۔ اب سوال پیدا ہوا کہ وہ کون سی راہ لے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں سب سے پہلے تریا پد میں، اس سے اٹھ کر برہم میں، پھر برہم سے اٹھ کر پار برہم میں۔ برہم کے دیش میں صبح کے سورج جیسی روشنی ہے اور پار برہم کے دیش میں کارتک کی پورنماسی کی طرح روشنی ہے۔ حالانکہ اس کا نمونہ کوئی نہیں، پھر بھی سمجھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں باہر کے 12,000 سورج اکٹھے کرو تو برہم کے ایک سورج کی روشنی بنتی ہے۔ جب تک ستگرو ساتھ نہ جائیں یہ اندر ایک قدم بھی نہیں جا سکتا۔ ستگرو پورا ہونا چاہیے۔ اس کے وپریت جنہیں پورا ستگرو نہیں ملا تو جہاں تک وہ خود جاتا ہے وہاں تک اپنے سیوکوں کو پہنچا کر چپ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی استاد انٹرنس تک پڑھا ہوا ہے تو وہ اپنے شاگردوں کو انٹرنس تک پڑھا کر چپ ہو جائے گا۔ اسی لیے سنت کہتے ہیں کہ کامل مرشد ہو۔ اب گرو نانک صاحب کہتے ہیں کہ ستگرو اس راہ لے جاتے ہیں۔ پھر ایک ستسنگی نے پوچھا حضور سسکار سور دیپک گینارے کا کیا مطلب ہے؟ مہاراج جی نے فرمایا آپ کے اندر پہلے دیپک یعنی جوت آئے گی، फिर जब सहस्रदल कमल को तय करके ब्रह्म में पहुंचोगे तो सूर यानी सूरज मिलेगा, और जब पार ब्रह्म में पहुंचोगे तो शशि यानी पूर्णमासी का चंद्रमा नजर आएगा। सत्संगी ने कहा, हुजूर घर के मायने वजूद हैं? महाराज जी ने फरमाया, हाँ और क्या, ये सारी दौलत हमारे अंदर ही है। क्या कहते हैं गुरु नानक साहेब, कर में कर देखाए दे सो सतगुर पुरख सुजान, पंच शब्द तुनकार तुन तह बाजे शब्द निशान। जो आपका घर यानी सचखंड है वो इसी घर यानी वजूद के अंदर है, यही वेदों में भी लिखा है कि आवित वर्णम। फिर सत्संगी ने पूछा, हुजूर ब्रह्म का रंग कैसा है? महाराज जी ने फरमाया, ब्रह्म का जो नूर है हम उसे बयान नहीं कर सकते, फिर भी इशारे के तौर पर सुबह के सूरज जैसा कहा है। गुरबाणी में भी यही आता है, एक कोसरो सिद्धि करत लाल तब चतुर पात्रो आयो, कि पहले स्थान को तय करके जब दूसरे स्थान त्रिकुटी पर पहुंचे तो उसका प्रकाश लाल है और वहां चार दल का कमल है। ऋषियों ने चारों महावाक्य वहीं से लिए हैं।
देख अदिष्ट रहो लिव लागी, सब त्रिभवन ब्रह्म सुबाया।
अब शिष्य पूछता है कि जी वो सूरज चंद्रमा और वो देश दृश्यमान हैं? तब गुरु साहब जवाब देते हैं कि नहीं, वे अदृष्ट हैं, वे इन आंखों का मजमून नहीं। सारी त्रिलोकी तुम्हारे अंदर है, खंड ब्रह्मांड अंदर हैं, अंदर कीर्तन हो रहा है, मगर वे आंखें और हैं, वे कान और हैं जिनके द्वारा ये चीजें देखी और सुनी जा सकती हैं। यही गुरु अंगद साहब कहते हैं, अखी बाजो वेखना बिन कन्ना सुनना। वहां ये शरीर नहीं जाता, ये आंखें नहीं जाती, ना ही ये कान काम देते हैं। जब मंसूर को अनल हक कहने के जुर्म में सूली पर चढ़ाने लगे तो पहले हुक्म हुआ कि इसे पत्थर मारो। सभी ने पत्थर मारे, मंसूर चुपचाप खड़ा पत्थरों की मार सहता रहा। शेख शिबली उसके राज से वाकिफ था, उसने सोचा कि अगर मैंने पत्थर मारा तो इसे लगेगा, और अगर मैं नहीं मारता तो शाही गुस्सा नाजिल होता है यानी मुझ पर उतरता है। ये सोचकर उसने एक फूल मारा तो मंसूर कहता है, हाय हाय, जितनी तकलीफ तेरे फूल से हुई है इतनी इनके पत्थर मारने से नहीं हुई, क्योंकि तू मेरे राज से वाकिफ था मगर ये लोग नावाकिफ हैं। आखिर उसके हाथ काटे गए। कहता है, मुझे इन हाथों की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास वे हाथ हैं जिनके जरिए मैं अर्श यानी आसमान के कंगूरे पर चढ़ता हूं। फिर पैर काटे तो कहता है, मुझे इन पैरों की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास वे पैर हैं कि अगर मैं चाहूं तो एक यहां और दूसरा मालिक की दरगाह में। फिर आंखें निकाली तो कहता है, मुझे इन आंखों की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास वे आंखें हैं जो बका यानी अविनाशी को देखती हैं, इसके विपरीत ये फना यानी नाशवान को देखती हैं। आखिर जब जबान काटने लगे तो कहता है, जरा ठहर जाओ और मुझे रब का शुक्र कर लेने दो। अब कहता है कि हे परमेश्वर, मेरी ताकत नहीं थी कि मैं इस इम्तिहान में पास हो जाता, ये तेरी बढ़ाई है कि तूने फेल नहीं होने दिया। जिस तरह कुम्हार मिट्टी को गूंध कर चाक पर चढ़ाकर उसका घड़ा बनाता है, बाहर से वो उस पर थाप मारता है मगर अंदर मदद देता है, इसी तरह तू बाहर से तो इम्तिहान ले रहा है मगर अंदर तूने अपना हाथ रखा हुआ है, इसीलिए तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। आओ जल्लादो, जबान काट लो। कहते हैं, आप ज्यों ज्यों अंदर रूहानी मंडलों पर चढ़ते चले जाओगे त्यों त्यों शांति खुशी और प्रेम बढ़ता चला जाएगा। सारी त्रिलोकी ब्रह्म पार ब्रह्म मतलब कि सब कुछ आपके अंदर है लेकिन है अदृष्ट।
अमृत रस पाए तृष्णा पौ जाए, अनुभव पद पावे, आप गवाए।
हर एक आदमी के अंदर अमृत बरस रहा है, वो भले इंसान तो क्या, चोरों ठगों दुराचारियों और दूसरे ऐब पाप करने वालों के अंदर भी है, मगर आंखों के पीछे पर्दा लगाकर सबको बाहर निकाला हुआ है। ना इन्हें उस अमृत का इल्म है, ना ये कोशिश ही करते हैं। वो अमृत माया पी जाती है, काम क्रोध पी जाते हैं। हालांकि इनकी अपनी जायदाद है, मगर ये शराबों कबाबों और दूसरे भोगों में लगे हुए हैं। इसके विपरीत अगर ये उस अमृत को पीते तो इनका जन्म मरण खत्म हो जाता, काम क्रोध सो जाते, माया मर जाती। मन लज्जत का आशिक है और अमृत के बराबर और कोई लज्जत नहीं। करोड़ों किताबें पढ़ लो, मन काबू में नहीं आता। इस दुनिया की करोड़ों लज्जतें दो, मन संतुष्ट नहीं होता। अब यहां मन और रूह जुड़े हुए हैं। जब तक मन जाकर इस अमृत को नहीं पीता, रजता नहीं, तृप्त नहीं होता, रूह आजाद नहीं होती। जिस वली, जिस अवतार, जिस महात्मा ने मन को काबू में किया है इसी लज्जत से, जब मन वश में आ गया फिर आशा तृष्णा मर जाती है और जो जन्म मरण का खौफ है वो नहीं रहता। हमारा मन भी महदूद यानी सीमित है और बुद्धि भी महदूद है, मगर जो ये दौलत है मन और बुद्धि दोनों से परे है। जब अनुभव खुलेगा फिर ये मैं नहीं कहेगा, बल्कि तू तू कहेगा। उस अमृत को पीकर इसकी हालत ही और हो जाएगी।
ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा, निर्मल शब्द कमाया।
कहते हैं जीते जी ब्रह्म पार ब्रह्म में पहुंचना ऊंची से ऊंची अवस्था है। अब सवाल पैदा हुआ कि ये मिलती किस तरह है, तो गुरु साहब जवाब देते हैं कि आपके अंदर है, जिसे गुरबाणी भी कहते हैं। उपनिषदों में ऋषि उद्गीत कहते हैं, मुसलमान फकीर कलाम इलाही या नगमाए आसमानी कहते हैं, वेद इसे नाद कहते हैं और हजरत ईसा इस ताकत को वर्ड कहते हैं। अगर लफ्ज नाम हों तो फिर गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है, अभ्यास करने की क्या जरूरत है, किताबें भरी पड़ी हैं। मगर नहीं, नाम का लफ्ज कोई और चीज है और बजाते खुद नाम कोई और चीज है। जिस तरह अगर मिश्री मिश्री कहें तो मुंह मीठा नहीं होता, इसके विपरीत अगर मिश्री खा लो तो मुंह मीठा हो जाएगा। इसलिए मिश्री का लफ्ज कोई और चीज है, बजाते खुद मिश्री कोई और चीज है। इसी तरह जो राम है ब्रह्म है वो नाम है। जब तक रूह इस शक्ति के साथ स्पर्श नहीं करती तसल्ली नहीं होती। वो हिंदुओं मुसलमानों ईसाइयों मतलब के सबके लिए एक ही है।
दृष्टि गोचर नाम अपारा, अतिरस मीठा नाम प्यारा।
कहते हैं वो नाम अदृष्ट है, इन आंखों से देखा नहीं जाता, अगोचर है, मन बुद्धि वहां नहीं पहुंच सकते। अति मीठा और अति प्यारा है, सबके अंदर है, मगर जिन्होंने मेहनत करके पर्दा खोल लिया वे इससे फायदा उठा गए, जन्म मरण खत्म कर गए, बाकी खाली आए और खाली चले गए। उस ताकत को नाम कहते हैं।
नानक को जुग जुग हर जस दीजे, हर जपिए अंत न पाया।
अब श्री गुरु नानक साहब प्रार्थना करते हैं कि ऐ मालिक तू मुझ पर ये कृपा कर कि मैं तेरा नाम जपता रहूं, मेरा मन और रूह युगों युगों तक तेरे नाम में लगे रहें, जो तेरा नाम है वो बेनतहा यानी अपार है।
अंतर नाम प्राप्त हीरा हर जपते मन मनते तीरा।
जो अंदर की कैफियत है उसे बयान करने के लिए लफ्ज नहीं मिलते। अब यहां गुरु नानक साहब नाम की हीरे से तुलना करते हैं क्योंकि दुनिया की कीमती से कीमती चीज हीरा है। अब हीरा मिट्टी है, पत्थर है, मगर नाम तो नाम है, वो ला बयान है, बयान में नहीं आ सकता। सो कहते हैं जब गुरु के दिए हुए नाम को जपने से वो हीरा रूपी नाम अंदर प्रत्यक्ष हो जाए तो मन से मन धीरज पा जाता है। मन की तीन हालतें हैं, या यूं कह दो कि मन तीन हैं। पहला पिंडी मन है, इसकी वासनाएं मैली हैं। आगे अंडी मन है, वासनाएं तो इसकी भी कुछ ऐसी ही हैं मगर वो दाना यानी सयाना दुश्मन है। इससे आगे निज मन है। मतलब ये है कि जब आप नाम जपोगे तीनों मन एक दूसरे से धीरज पा जाएंगे, शांति आ जाएगी। यही बाबा फरीद साहब कहते हैं, फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माख्यो मांजा दुध सब्बे वस्तु मिठियां रब न पूजन तुद। शक्कर मीठी है, खांड मीठी है, मिश्री मीठी है, गुड़ मीठा है, शहद मीठा है, दूध मीठा है, मगर जो लज्जत नाम की है वो इनमें नहीं है, वो नाम तुम्हारे अंदर है।
दुघट घट भौ भंजन पाइए बाहुड़ जन्म न जाया।
अब कहते हैं कि यह घाटी तो बड़ी मुश्किल है, जीते जी मरना है, लेकिन अगर एक बार चढ़ जाओ तो फैसला हो जाए। फिर कौन जन्म ले और कौन मरे, कौन आए और कौन जाए, लेकिन जीते जी मरना आसान नहीं। मन इंद्रियों को रोकना पड़ता है। अब जीते जी मरना ये पसंद नहीं करता और जीते जी मरे बिना वो नाम नहीं मिलता। अगर ये तकलीफ उठाकर जीते जी मर जाए तो वो सारे दुखों को दूर करने वाला परमेश्वर इसे मिल जाए।
भगत है तो गुरु शब्द तरंगा हर जस नाम पदार्थ मंगा।
अब गुरु नानक साहब कहते हैं कि भक्ति का हेतु, भक्ति हासिल करने वाला सामान या जिसके जरिए भक्ति मिल सकती है, गुरु और शब्द हैं। शब्द कहो या नाम, गुरु के बिना नाम नहीं मिलता और नाम बिना अंदर पर्दा नहीं खुलता। दोनों लाजिम मलजूम यानी जरूरी हैं। जब गुरु मिलेगा वो कहेगा कि ना बाल बच्चे छोड़, ना काम काज छोड़, ना कौम मजहब छोड़, बल्कि रोज रात को 2 घंटे लगाकर अंदर पर्दा खोल ले। जो संतों का मार्ग है बड़ा पुरअमन यानी शांतिमय है, मगर हम अलग अलग टोलियां यानी समुदाय बना लेते हैं। अगर सारे मजहबों वाले अंदर चले जाएं तो लड़ने लायक ही ना रहें। अब कहते हैं कि हे परमेश्वर, मेरी ख्वाहिश गुरु और शब्द की है, तू कृपा करके मुझे शब्द के साथ जोड़ दे, क्योंकि गुरु के बगैर शब्द नहीं और शब्द के बगैर मुक्ति नहीं।
हर पावे गुरु मेल मिलाए हर तारे जगत सबाया।
जब परमेश्वर किसी मजहब, किसी कौम, किसी आदमी को बख्शना चाहता है तो पहले उसका किसी रूहानी मंडलों पर जाने वाले महात्मा के साथ मिलाप करवाता है। उसे आप महात्मा कहो, योगी कहो, योगीश्वर कहो या उसका कोई और नाम रख लो। जब महात्मा मिला, उसने नाम दिया, हमने नाम की कमाई की, अंदर पर्दा खुल गया, मुक्ति हो गई। चाहे हिंदू होकर अंदर जाओ, چاہے مسلمان ہو کر جاؤ، چاہے کوئی اور قوم کے ہو کر جاؤ، جو پرمیشور کا قانون ہے وہ سب کے لیے ایک ہی ہے۔ وہ کسی آدمی کا بنایا ہوا نہیں بلکہ پرمیشور کا بنایا ہوا ہے، یگوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم اسے نہ بڑھا سکتے ہیں، نہ اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کمی کر سکتے ہیں۔ اندر سب کچھ پہلے ہی بنا ہوا ہے۔ پرمیشور نے کل عالم کو تارنے کا ایک ہی طریقہ رکھا ہوا ہے۔
جن جپ جپیو ست گر مت واکے، جم کنکر کال سیوک پگتا کے۔
کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے من کی متی کو چھوڑ کر ستگرو کی متی لے لی، جو طریقہ ستگرو نے اندر جانے کا بتایا اس کے مطابق نام جپ کر اندر پردہ کھول لیا، پھر ان کی موت کے وقت نہ کال آتا ہے، نہ دھرم رائے ہی آتا ہے، نہ یمدوت آتے ہیں، اور نہ حساب دینا پڑتا ہے۔ ستگرو آتا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ جو ہمارے پچھلے جنموں کے کرم ہیں انہیں یا تو پیار سے بھوگ لیں یا نام کے ذریعے ناش کر دیں اور آگے سے نہ کریں۔ وید شاستر اور دوسرے گرنتھ کہتے ہیں کہ نام کل پاپوں کا ناش کرتا ہے۔ گرو ارجن صاحب نے بھی فرمایا ہے، سرب روگ کا اوکھد نام۔ میرا کئی بار کا تجربہ ہے کہ نام جپنے والے کی موت کے وقت یمدوت نہیں آتے، اسے مرتے وقت اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی کی بیاہ کی بھی نہیں ہوتی۔ جن کے گھر ستسنگی مرے ہیں ان سے پوچھو۔ میں نے بہت ساری موتیں دیکھی ہیں۔ وہ یمدوت جو جان نکالتے ہیں اور کال جس کے آگے کرموں کا رجسٹر پیش ہوتا ہے، نام والے اس راہ ہی نہیں جائیں گے جہاں پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔
اتم سنگت گات مت اتم، جگ پاؤ جل پار ترایا۔
کہتے ہیں ایسے مہاتما جن سے مل کر یم اور کال نزدیک نہیں آتے، ان کی صحبت بڑی اتم ہے اور ان کا طریقہ بھی بڑا اونچا ہے۔ اگر ہم ان کی ہدایت کے ذریعے اندر جائیں تو سنسار سمندر سے پار ہو جائیں اور ہمارا جنم لینا مرنا ختم ہو جائے۔
ایہو پوجل جگت سبد گر تریا، انتر کی دبدھا انتر جریا۔
اب گرو نانک صاحب پھر اس مضمون کو دہراتے ہوئے کہتے ہیں کہ سنسار روپی سمندر سے ترنے کے لیے دو ہی چیزیں ہیں، ایک گرو، دوسرا شبد۔ جو مہاتما اندر جاتا ہے وہی ہمیں لے جا سکتا ہے۔ وہ ہمیں نام دے، ہم نام کی کمائی کریں۔ جتنے مہاتما اندر گئے ہیں نام یا شبد کی کمائی کر کے، گرو کے بغیر شبد نہیں ملتا اور شبد کے بغیر اندر پردہ نہیں کھلتا۔ وہ شبد گانے بجانے والا نہیں بلکہ لکھنے پڑھنے میں نہ آنے والا گیان ہے، سارے کھنڈوں برمانڈوں کی جانوں کی جان ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر دنیا میں کوئی پورن وید، پورن شاستر، پورن مشین ہے تو انسان ہے۔ پرماتما نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ نر نارائنی دیہ ہے۔ وید شاستر گرنتھ پوتھیاں کیا ہیں؟ رشی منی سنت مہاتما اندر گئے، کمائی کی، جو نظارے انہوں نے اندر دیکھے ہماری ہدایت کے لیے باہر کاغذوں مذہبی کتابوں میں لے آئے۔ اس لیے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے اندر کا حال ہے، ان میں ان نظاروں کا ذکر ہے، نظارے بذات خود نہیں۔ وہ تو جب آپ اندر جاؤ گے ملیں گے۔ اس کے اندر دو طاقتیں ہیں، ایک اسری یا کال کی اور دوسری دیویے یا دیال کی۔ ایک کال کی طاقت ہے، دوسری دیال کی طاقت ہے۔ پھر جو کال کی طاقت ہے اس کے ماتحت بہت ساری مخالف یعنی ورودھی طاقتیں ہیں، وہ دویدھا ہے۔ جب اندر نام پرکٹ ہو جاتا ہے تو وہ ساری ناش ہو جاتی ہیں۔ اس طرح اندر کا فیصلہ اندر ہی ہو جاتا ہے۔
पंच बाण ले जम को मारे। गगनंतर तनख चढ़ाया।
अब जो शब्द है असल में तो वो एक ही है, मगर चूंकि वो पांच मंजिलों में से गुजरता है इसलिए अलग अलग आवाज हो जाने के कारण पांच शब्द कहकर बयान किया जाता है। हर एक देश की अलग अलग कैफियत है। यहां मातलोक में माया प्रबल है और ब्रह्म गुप्त है। अगली मंजिल सहस्रदल कमल में माया और ब्रह्म एक जैसे हैं। दूसरी मंजिल त्रिकुटी में ब्रह्म प्रकट और माया गुप्त है, और इससे आगे जाओ तो ब्रह्म ही ब्रह्म है। सो अलग अलग देशों में से गुजरने के कारण पांच शब्द कहे जाते हैं, वरना शब्द तो एक ही है। अब कहते हैं कि शब्द कमान है और जो पांच धुने हैं ये पांच तीर हैं। जब आप शब्द की कमाई करोगे तो काल और महाकाल की ताकत नहीं कि आपके नजदीक आ सकें, और जो रिद्धियां सिद्धियां हैं सारी दूर भाग जाएंगी।
साकत नर शब्द सुरत क्यों पाया। शब्द सुरत बिन आइए जाइए।
अब ये जो तरीका है युगों युगों से चला आ रहा है। यही सतयुग में था, यही त्रेता में था, यही द्वापर में था, और यही कलयुग में है। कहते हैं जो अंदर नहीं गए, पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड पर नहीं चढ़े, उनका जन्म मरण उसी तरह जारी रहा। उन्हें ना कोई रूहानी गुरु मिला, ना शब्द मिला, ना अंदर गए और ना जन्म मरण खत्म हुआ। जो मन के इंद्रियों के गुलाम हैं उन्हें साकत कहा जाता है, मनमुख कहा जाता है। उन्होंने ये नाम की लज्जत नहीं ली। कल्प की गिनती चौकड़ी युगों में होती है। वे कल्प पर्यंत नरकों में सड़ते और 84 के दुख भोगते हैं। इसके उलट जिन्होंने अंदर का पर्दा खोल लिया उन्होंने फायदा उठा लिया। फिर संत ये नहीं कहते कि ये दौलत मरने के बाद मिलेगी, बल्कि कहते हैं कि जीते जी हासिल करो, मरने का उधार नहीं। क्योंकि जो जीते जी अनपढ़ है वो मरने के बाद भी अनपढ़ है। जितने महात्मा हुए हैं सभी यही कह रहे हैं। मौलाना रूम साहब, शम्स तबरेज, दादू जी, पलटू जी, तुलसी साहब, कबीर साहब, गुरु नानक साहब, स्वामी जी महाराज, मतलब के सभी का रास्ता पांच शब्द का है। सारे संसार के लिए एक ही कानून है, मगर जो शरीयत वाले हैं उनकी ये राह नहीं। जो अहले शरीयत इस कानून से बेखबर हैं वे जो मर्जी है कह लें, मगर सच ये है कि अगर रूह नाम के साथ नहीं जुड़ी, अंदर पर्दा नहीं खुला, तो जन्म मरण खत्म नहीं होता।
नानक गुरुमुख मुक्त परायण हर पूरे भाग मिलाया।
अब कहते हैं कि मुक्ति का रास्ता गुरुमुख या कमाई वाले महात्मा से मिलता है। जो खुद रूहानी मंजिलों पर जाता है वही आपको ले जा सकता है। आप उसे गुरुमुख कहो, गुरु कहो, मतलब कि उसका कोई भी नाम रख लो। मगर कामिल टीचर कहीं कहीं है, आम नहीं, और वे बड़े भाग्य से मिलते हैं। ऐसे फकीरों की सोहबत से हमें रूहानियत का कुछ पता लगता है। कहते हैं कि मुक्ति देने वाला कामिल मुर्शद यानी पूर्ण गुरु पूरे भाग्य से मिलता है।
निरपा सतगुरु है रखवाला। भगत प्राप्त गुरु गोपाला।
कहते हैं सतगुरु हर मंजिल पर शिष्य के साथ होता है। फिर भी ये एक अजीब खेल है कि वो जब तक इंसानी कालेब यानी जामे में बैठा हुआ है कभी नहीं कहता कि मैं सतगुरु हूं। अब सवाल पैदा हुआ कि वो असल में क्या है। कहते हैं कि जो सबसे परे है जिसे आप कुल मालिक कहते हो, वो सतगुरु का रूप है, और जो देह रूप धारण किया है ये इस तरह है जिस तरह थिएटर में कोई रामचंद्र बनता है, कोई कृष्ण जी का स्वांग बनाता है, कोई कुछ, सारे एक्टर अपना अपना पार्ट अदा करके चले जाते हैं। सो गुरु भी 10, 20, 50, 100 साल अपना काम करके चला जाता। अब कहते हैं कि जो निर्भय निर्वैर है, आखिरी मंजिल है, ना कभी आया ना कभी गया, ना कभी जन्मा ना कभी मरा है, वो हमारा गुरु है। अब हमारी मर्जी है हम उसे गुरु कहें, परमेश्वर कहें या कुछ और। वो शक्ति चोरों ठगों दुराचारियों और कई ऐब पाप करने वालों, मतलब के सबके अंदर है, मगर वो दबी हुई आई और दबी हुई चली गई। जिस तरह विद्या की ताकत तालिब इल्म यानी विद्यार्थी के दिमाग में मौजूद है, मगर जब तक कोई उस्ताद उस ताकत को नहीं जगाता विद्या नहीं आती, इसी तरह वो परमेश्वर यानी नाम की ताकत हर एक आदमी के अंदर है, मगर उसके अंदर होते हुए भी ये कीड़ा पतंगा बनता फिरता है और दूसरी योनियों में दुख उठाता है। जब कोई रूहानी टीचर मिले, वो नाम दे, ये कमाई करके अंदर पर्दा खोल ले, तो इसकी मुक्ति हो जाए। मगर इसकी मौजूदा हालत क्या है? एक महात्मा सुंदरदास जी हुए हैं, वे इसका जवाब देते हैं। एक समय वन में बसते मृगराज की नार ने केहर जायो, क्या कारण पाली के हाथ चढ़ो उन लेकर छेरी के संग रलायो, भूल गयो कुल के पराक्रम सो हंडू भयो हरि दूब चरायो, सुंदर ऐसे ही आत्मा संग शरीर के आप भुलाई के जीव कहायो। एक दफा एक जंगल में किसी शेरनी ने बच्चे को जन्म दिया। इत्तफाक से वो भेड़े चराने वाले के हाथ आ गया। उसने भेड़ बकरियों के दूध से उसकी परवरिश करनी शुरू कर दी। जब जरा सयाना हुआ तो उन्हीं के साथ चरने लग गया। एक दिन एक शेर आ गया। जब उसने ये नज़ारा देखा तो हैरान होकर कहता है कि अरे अरे, भेड़ों में शेर। उसे जाकर कहने लगा कि तू शेर है। शेर के बच्चे ने कहा कि नहीं, मैं भेड़ हूं। उसने कहा कि वो कैसे? शेर के बच्चे ने कहा कि मैं यहीं जन्मा हूं, पला हूं, इन्हीं के साथ रहता हूं। शेर ने कहा कि चल मेरे साथ। वो उसे एक पानी के तालाब पर ले गया और कहा कि देख, मेरी और तेरी शक्ल एक है कि नहीं? शेर के बच्चे ने कहा, शक्ल तो एक जैसी ही है। शेर कहता है कि मैं भी गरजता हूं, तू भी गरज। जब शेर गरजा तो शेर का बच्चा भी गरजा। जब दोनों गरजे तो वहां ना भेड़े रहीं ना चरवाहा रहा, सब भाग गए। ये तो है मिसाल। असली बात क्या है कि आत्मा शेर है, मन चरवाहा है और इंद्रियां भेड़े हैं। अब इसे अपनी खबर नहीं, ये मन और इंद्रियों के साथ भूली हुई है। जब इसे कोई अंदर जाने वाला टीचर मिल जाए, ये कमाई करके अंदर चला जाए, अपने आप को देख ले, तो मन और इंद्रियां सब भाग जाते हैं, इसका जन्म मरण खत्म हो जाता है। ऋषियों मुनियों महात्माओं ने जो वेद शास्त्र लिखे हैं और अन्य ग्रंथ लिखे हैं, उनका मकसद यही है कि ये किसी तरह अंदर चला जाए। लेकिन जो असल चीज है वो आदमी के अंदर है। अब कहते हैं कि जो मालिक का असली रूप है वो निर्भय निर्वैर है, सारी दुनिया को पालने वाला है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, हम उसे गुरु कहते हैं।
तुन आनंद अनाहद वाजै, गुर शब्द निरंजन पाया।
अब गुरु नानक साहब के आगे शिष्य सवाल करता है कि जैसे आप निर्भय निर्वैर कहते हो, ये तो आपके लफ्ज हैं, जो वो शक्ति है वो दिखाओ। तो गुरु साहब जवाब देते हैं कि अगर तू उस मालिक को देखना चाहता है तो पहले 9 दरवाजे छोड़कर सूक्ष्म देश के हेडक्वार्टर तुरियापद में चल। वो निरंजन का देश है, वहां धुन हो रही है। जब तू निरंजन के दर्शन करेगा और उस धुन को सुनेगा तो तुझे पता लग जाएगा, मगर दुनिया को खबर नहीं। अब ये जो मजमून है کہنے سننے کا نہیں۔ ایک مسلمان فقیر کہتا ہے، کان راکھ کے خبر شد خبرش باز نعمت، کہ جسے اس کی مالک کی خبر ملی پھر اس کی یعنی اس مہاتما کی خبر نہیں ملی۔ کبیر صاحب کہتے ہیں، چلی پوتلی لون کی تھا سندھو کو لین، آپے گلے پانی بھئی الٹی کہے کو بین، نمک کی ڈلی سمندر کی تھاہ لینے گئی پانی میں ہی گل گئی، اب خبر کون لائے کوئی نہیں۔ یہ وصال عجیب چیز ہے، عجیب مضمون ہے، اس سے میٹھا مضمون اور دنیا میں ہے نہیں۔ وہ شبد مایا سے رہت ہے، اناہد ہے، یعنی اس کی کوئی حد نہیں، ہر وقت اندر دھنکاریں دے رہا ہے، وہ ساری شکتیوں اور سارے آنند کو دینے والا ہے۔
نرپاسو سر نہی لکھا آپ الیکھ قدرت ہے دیکھا۔
کہتے ہیں وہ مالک نربھے نرویر ہے، سوئم پرکاش ہے، اور سب چیزیں لیکھے میں ہیں، مگر وہ لیکھے سے باہر ہے، پھر وہ کسی کے ماتحت نہیں۔ سوال پیدا ہوا کہ وہ رہتا کہاں ہے، تو گرو صاحب جواب دیتے ہیں کہ وہ ہر گھٹ کے اندر ہے، باہر جو کچھ ہے اس کی قدرت ہے، مگر دنیا باہر دیکھتی ہے اندر نہیں جاتی، اس لیے خالی کی خالی رہتی ہے۔
آپ اتیت اجونی سمبھو نانک گرمت سو پایا۔
وہ پرمیشور اتیت ہے، تیت کے معنی ہیں مایا، وہ مایا سے رہت ہے، اجونی یعنی جنم مرن میں نہیں آتا، سمبھو یعنی سوئم پرکاش ہے، واحد اللہ شریک ہے، خود خدا ہے۔ کب ملتا ہے؟ جب یہ اپنی متی کو چھوڑ کر گرو کی متی لے لے۔ جو ٹیچر خود روحانی منزلوں پر جاتا ہے وہی آپ کو اندر جانے کا راستہ بتائے گا، آپ اس کی ہدایت کے مطابق کمائی کر کے اندر چڑھو اور اپنی دولت کو سنبھال لو، آپ کی چیز ہے اور اکال پرش نے آپ کے لیے ہی اندر رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ شری گرو نانک صاحب کی فلسفی ہے، یہ انہی کی تعلیم ہے۔ بتائیے کوئی تحقیقات یعنی کھوج کرتا ہے؟ کوئی نہیں، الگ الگ پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، جس سے پوچھو وہ کہتا ہے یہ فلانے کی پارٹی ہے، یہ فلانے کی۔ یہ جتنے مذہب ہیں اور جتنی پارٹی بازی ہے، اس اندرونی راہ پر جانے میں سارے بندھن ہیں۔ آپ چاہے کسی مذہب کے کیوں نہ ہوں، اندر سارے مذہب ایک ہیں۔ جب پردہ کھول کر اندر جاؤ گے تو دویت میں سے نکل کر ایکتا میں آ جاؤ گے، مگر دنیا کے لوگوں کے کھوٹے بھاگ گئے، وہ سنتوں کے پاس نہیں جاتے، بلکہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو باپ دادا نے بھی گرو نہیں دیکھا، ہم گرو کے پاس کیوں جائیں۔ اب کہتے ہیں کہ سیوک کا دھرم ہے کہ جو مرضی ہے گرو کو خطاب دے دے، مگر وہ آپ نہیں کہتے کہ ہم گرو ہیں، اگر کہیں آجزی اور نمرتا ہے تو سنتوں کے پاس ہے، ہم مورکھوں میں تو وہ آجزی اور ونیشیلتا بھی نہیں، بنا آجزی کے مالک نہیں ملتا۔ اس آجزی کی حالت کا پتہ تب لگتا ہے جب یہ اندر جاتا ہے۔
انتر کی گت ستگر جانے، سو نرپو گر سبد پچھانے۔
اب شش لحاظ نہیں کرتا بلکہ پرشن کرتا ہے کہ جسے آپ گرو کہتے ہو اور جو آپ کو وہاں سچکھنڈ لے جاتا ہے، آپ میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ تو گرو صاحب جواب دیتے ہیں کہ کوئی نہیں، کیونکہ جب وہ شش کو ساتھ لے کر اندر جاتا ہے تو پہلے سب سے آخری مقام کے مالک یا سندھ میں گرو جذب لولین ہوتا ہے، پھر شش لولین ہوتا ہے۔ میرا اپنا واقعہ ہے، جب میں نے رڑکی سے کالج پاس کیا تو جو میرے استاد تھے उनकी भी वही डिग्री थी जो मेरी। जब हम यानी मैं और मेरे साथी उन्हें सलाम करके आने लगे तो उन्होंने कहा, आज हम और आप एक जैसे हैं, क्योंकि जो डिग्री हमने पास की थी वही आज आपने पास कर ली है। तुलसी साहब कहते हैं, तुलसी मैं तू जो तजय रहे दीन गति सोई, गुरु नवे जो शिष्य को साथ कहावे सोई। इसमें शक नहीं कि हम जीव और वो गुरु एक ही हैं, मगर हमने अभी पर्दा नहीं खोला, इसलिए हम शिष्य हैं और वो गुरु है। फिर भी उन संतों के दिल में कोई फर्क नहीं होता, वे वसीह दिल यानी उदार हृदय बड़े जिगर वाले होते हैं, ना ही वे कभी अपने पूर्ण होने का दम मारते हैं। अब शिष्य और ऐतराज करता है कि मैं आपको गुरु कहता हूं और अपने आप को शिष्य समझता हूं, और जो निर्भव यानी निर्भय गुरु है वो कौन है? तो गुरु साहब जवाब देते हैं कि जब तक यह अंदर की गति से वाकिफ नहीं होता तब तक यह शिष्य है, और जो इसे अंदर जाने का भेद देता है वो गुरु है। मगर जो आखिरी मंजिल है वहां ना गुरु है ना चेला है, वहां जाकर सब एक हो जाते हैं, वहां पहुंचकर गुरु और शिष्य में फर्क नहीं रहता। महात्मा तो कहते हैं कि आप और वो यानी मालिक एक ही हो, वो मालिक निर्भव है। जो महात्मा अंदर जाता है वो मालिक में लवलीन हो चुका है। अगर हम उसे भी निर्भव कह दें तो कोई डर नहीं। जो सतगुरु हमें तालीम देता है वो खुद गुरु और शब्द के जरिए निर्भव में मिलकर निर्भव हो चुका है। जब हम उसकी हिदायत पर अमल करेंगे हम भी निर्भव हो जाएंगे।
अंतर देख निरंतर बुझे अंत न मन डोलाया।
कहते हैं कि अगर आप अंदर के भी अंदर चले जाओगे तो आपके और मालिक के बीच कोई फर्क नहीं रहेगा। वो जो अवस्था है वहां ना आदि है ना अंत, ना एक है ना दो, उसे बयान करने के लिए कोई लफ्ज नहीं है।
निरपासो अभ्यंतर वस्या एहनिस नाम निरंजन रस्या।
कहते हैं वो निर्भय शक्तिमान मालिक हमें मिल गया। ये हालत कब महसूस होती है? जब ये नौ द्वारों को खाली करके तुरियापद में पहुंच जाता है और फिर तुरियापद को छोड़कर गुरु में समाता है। जिस तरह आदमी एमए पास करके किसी पेशे या किसी लाइन में जाने के काबिल होता है, इसी तरह वहां पहुंचकर रूहानियत की अलिफ बे यानी क ख ग शुरू होती है। मगर यहां इसका क्या हाल है? जिस तरह किसी गैस लैंप पर टाट के 10-20 पर्दे चढ़ा दें तो आप उसे रात के वक्त जिस कमरे में भी ले जाकर रखोगे कोई रोशनी नहीं होगी, मगर ज्यों ज्यों पर्दे उतारते जाओगे पर्दों में से रोशनी की किरणें छन छन कर बाहर निकलनी शुरू हो जाएंगी। जब सारे पर्दे उतर गए तो गैस लैंप पूरी रोशनी देगा। इसी तरह हमारी आत्मा पर पहले ये स्थूल पर्दा शरीर है, जब अभ्यास करके तुरिया पद में जाएंगे तो ये उतर जाएगा, मगर वहां सूक्ष्म पर्दा मौजूद है। जब और मेहनत करके ब्रह्म में जाएंगे तो सूक्ष्म पर्दा उतर जाएगा, मगर वहां कारण पर्दा मौजूद है। इसके अलावा मन, माया, 25 प्रकृतियां वगैरह कई पर्दे और हैं। जब आप अभ्यास करके पार ब्रह्म में जाओगे, उस अमृतसर में स्नान करोगे तो आपके सारे पर्दे उतर जाएंगे, आत्मा नंगी हो जाएगी। उस वक्त आपका अपना प्रकाश 12 सूरज का होगा। वहां जाकर इसे पता लगेगा कि मेरा परमात्मा कौन सा है, नहीं तो यह पर्दों में लिपटा हुआ अंधा आया और अंधा चला गया। सो कहते हैं आप निरंजन के देश से ऊपर चलो, वहां जाकर निर्भय निर्वैर मालिक का पता लगता है।
नानक हर जस संगत पाइए हर सहज सहज मिलाया।
कहते हैं सहज समाधि की अवस्था महात्मा की सोहबत और संगति से मिलती है। सहज समाधि कोई छोटी अवस्था नहीं बल्कि त्रिलोकी से परे है। जब आप अभ्यास करके आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाओगे सहज समाधि में पहुंच जाओगे। जो सहज समाधि है वो त्रिलोकी में नहीं वो चौथे पद में जाकर मिलती है।
अंतर बाहर सो प्रभ जाने रहे अलिप्त चलते कर आने।
अब जिज्ञासु सवाल करता है कि अभी तक तो आप मालिक को अंदर ही अंदर बताते चले आए हो, क्या वो बाहर नहीं? तो श्री गुरु नानक साहब जवाब देते हैं कि वो बाहर भी है और अंदर भी है, वो बाहर और अंदर एक जैसा है। मगर जब तक आप अभ्यास करके उसे एक बार प्रत्यक्ष नहीं कर लेते तब तक वो बाहर नहीं दिखता। मिसाल के तौर पर जिस तरह दूध में घी है, अगर किसी ने दूध में से घी ना निकाला हो वो कभी नहीं मानता कि दूध में घी है। वो कहेगा कि दूध दिखाई देता है पर दूध में घी दिखाई नहीं देता। फिर दलील देता है कि घी में पूरियां पकती हैं, दूध में पूरियां नहीं पकती। दूध में नमक गल जाता है, घी में नमक नहीं गलता। अगर उसके सामने दूध को जमा कर बनाएं दही, दही को मथ कर निकालें मक्खन, फिर मक्खन को गर्म करके बनाएं घी, तो वो जब कहीं दूध देखेगा फौरन कहेगा इसमें घी जरूर है, चाहे नजर नहीं आता। इसी तरह जिन महात्माओं ने कमाई करके पर्दा खोल लिया है, अंदर रूहानी मंजिलों पर गए हैं, उनके लिए अंदर और बाहर एक जैसा है। इसके विपरीत जिन्हें अंदर जाने वाला कोई महात्मा नहीं मिला उनके लिए अंदर और बाहर एक नहीं है। लोग मक्का, मदीना, काशी और दूसरे तीर्थ स्थानों पर ढूंढ आए मगर वो नहीं मिला। वो बाहर ना किसी को मिला है ना मिलेगा। परमेश्वर को अंदर और बाहर कौन देखेगा? जो ताल्लुक में ला ताल्लुक है, यानी दुनिया में रहते हुए काम काज करते हुए जिसका नाम के साथ प्यार है। संत नहीं कहते कि बाल बच्चे छोड़ो, बल्कि कहते हैं कि अपने अपने मजहब में रहो, अपना काम काज करो, लेकिन अंदरूनी प्यार गुरु और नाम के साथ रहे। जिस तरह कमल का फूल पानी में रहते हुए भी सूखे का सूखा रहता है, पानी उसे गीला नहीं करता। रहे अलिप्त चलते कर आणे, यानी ये अलिप्त रहे और जो मन हर वक्त चलायमान रहता है उसे साकिन यानी खड़ा करे। जब तक मन खड़ा नहीं होता तब तक वो मालिक नहीं मिलता। आम तौर पर लोग कहते हैं कि खजाने पर सांप होता है। अब जब तक सांप पकड़ा ना जाए या मारा ना जाए तब तक खजाना नहीं मिल सकता। इसी तरह हमारे हृदय पर मन रूपी सांप बैठा हुआ है। वेद शास्त्र और मजहबी किताबें गवाही देती हैं कि जो नाम का खजाना है, खंड ब्रह्मांड हैं, वे मन के पर्दे के पीछे हैं। मगर डॉक्टर एतराज करते हैं कि हमने कई मुर्दे चीरे लेकिन अंदर ना कभी ब्रह्म देखा है, ना पार ब्रह्म देखा है और ना कभी सचखंड देखा है। अब डॉक्टर भी सच्चे हैं और ग्रंथ पोथियों का कहना भी झूठ नहीं। डॉक्टर जड़ वस्तु को चीरते हैं, रूहानियत को नहीं चीरते। ये चीजें यानी खंड ब्रह्मांड सूक्ष्म और चेतन हैं और अभ्यास के जरिए देखी जा सकती हैं, इन आंखों का मजमून नहीं। सो कहते हैं कि हमारे हृदय पर मन रूपी सांप बैठा हुआ है जो हमें अंदर नहीं जाने देता, और जब तक हम अंदर नहीं जाते हमें कुछ नहीं मिलता। ये जितने वेद शास्त्र हैं, ग्रंथ पोथियां हैं, पढ़ना पढ़ाना है, सत्संग करना है, ये सब मन को वश में करने की दवा है। वो परमेश्वर अंदर भी है और बाहर भी है। अगर आप उससे मिलना चाहते हो तो मन को खड़ा करके अंदर चले जाओ। ये रब्बी ज्ञान है और अनादिकाल से चला आ रहा है।
ऊपर आद सरब त्यो लोई सच नानक अमृत रस पाया।
त्रिलोकी तक काल महाकाल का ताल्लुक है। जब आप त्रिलोकी से पार चौथे लोक में जाओगे वो असली से असली और सबका आदि मालिक आपको मिल जाएगा।
अंतर बाहर सौ प्रभ जाने रहे अलिप्त चलते कर आने ऊपर आद सरब त्यों लोई सच नानक अमृत रस पाया।